नमस्कार प्रिय श्रोताओं, सत्यवचन कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस अध्ययन माला में इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस द्वारा लिखी गई कुलुसियों नामक पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन माला से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को आज सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से कुलुसी नामक पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसे पौलुस ने बंदी गृह में रहते हुए लिखा है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, कानों को, हृदय और विचारों को खोल दें, ताकि प्रभु जब आपका वचन हम सुने तो निश्चित रूप से प्रत्येक के जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए। इस समय हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार अवस्था में है, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान है, पारिवारिक समस्याओं में या अपने व्यापार की समस्याओं में या संतान पाने की समस्याओं में। पिताजी, आप सबकी सहायता करें, अपनी शांति उनके जीवन में दें, आज अपने वचन से बोले और बातचीत करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पौलुस विश्वासियों को चेतावनी देता है कि वे लुभाने वाली बातों से, बुद्धि की बड़ी बड़ी बातों से सावधान रहें और अपना आधार प्रभु यीशु को मानकर चलें, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए ज्ञान ठहराया है। क्योंकि हम देखते हैं कुलुसियों के पत्री 2 अध्याय उसके 9 पद में, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता वास करती है, यह मसीह के ईश्वरत्व के विषय स्पष्ट कथन है। इससे अधिक बलपूर्वक और मजबूत और कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसमें ईश्वरत्व 99.44% नहीं परंतु 100% वास करता है। कुलुसियों के पत्री 2 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। तुम उसी में भरपूर हो गए हो, इसे सजीवता में कहा जा सकता है, आप उसके साथ जीवन यात्रा के लिए संपन्न हो। क्या यह व्यक्त करने का अति उत्तम तरीका नहीं है? आप जीवन यात्रा में मसीह के साथ के लिए तैयार हैं और आपको यात्रा में जिस बात की आवश्यकता होगी वह आपको मसीह यीशु में प्राप्त होगी। यही कारण है कि हम कहते हैं यीशु ही उत्तर है। आपका प्रश्न क्या है? आपको आज किस बात की आवश्यकता है? क्या आप मानवीय विचारों से भ्रमित हैं? क्या आप मनुष्य की परंपराओं से भरमाए गए हैं तो आप मसीह की ओर पलटे हैं। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि विश्वासियों को बाहरी दिखावे से दूर रहना है। सच्चा खतना नया जन्म है। यही बात उसने गलातिया प्रदेश के विश्वासियों से कही थी, जिसे हम गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं। न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। मसीह को स्वीकार करके उसे अपना मुक्तिदाता मानने पर हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं। हम उसमें अवस्थित हो जाते हैं। हम उसकी पहचान में हो जाते हैं। कुलुसियों के पत्री 2 अध्याय के 12 पद में लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाढ़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। लंदन के एक विधि विशेषज्ञ ने कहा, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि यह क्या है, और आपको बता देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का प्रमाण कभी असत्य सिद्ध नहीं हो पाया है। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान ऐतिहासिक सत्य है। मसीह यीशु की मृत्यु में हम भी उसके साथ मर गए, क्योंकि उसने हमारा स्थान लिया था। जब वह फिर जी उठा तो हम भी उसके साथ जी उठे, और अब हम जीवित प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। अतः जीवित मुक्तिदाता के साथ जुड़ना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम उसे समझें। मेरे मित्रों, यह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम भली भांति जान लें कि बाहरी दिखावा हमें प्रभु यीशु से जोड़ेगा। मुख्य बात तो यह है कि हमारा नया जन्म हुआ है या नहीं। हम प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मानते हैं या नहीं? यदि हम उसे जानते हैं तो हम उसकी पहचान में हैं और उसके अनुसार चलेंगे। मसीह के साथ पहचान में होने का अर्थ है मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। मेरे प्रियो, बपतिस्मा द्वारा हम मसीह की पहचान में होते हैं और हम उसके साथ फिर से जी उठे हैं, अर्थात हम जीवित मसीह के साथ जुड़ गए हैं। हम मरे नहीं हैं, परंतु जीवित मसीह के साथ जुड़ गए हैं। उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया। उद्धार परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ्य द्वारा पूरा हुआ था। यह तत्व ज्ञान दर्शन शास्त्र नहीं है। यह कोई युक्ति भी नहीं है। यह कोई रीति और रिवाज नहीं है। यह परमेश्वर के योग्य जीवन का मार्ग नहीं है। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय के 13 पद में लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। ध्यान दीजिए, उद्धार का अर्थ पुराने स्वभाव को सुधारना नहीं है। उद्धार का अर्थ है नया स्वभाव अपनाना, अपने पुराने स्वभाव को, बुरी आदतों को छोड़कर, त्याग कर अच्छी और भली आदतों को अपना लेना, पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र को पहन लेना। पौलुस को यूनानी दर्शन शास्त्र के 2 विचारों का सामना करना पड़ रहा था जो उस युग में प्रचलित थे। यद्यपि वे एक दूसरे के विपरीत थे, उनका उद्भव एक ही सिरे से था। एक था स्टोइक दर्शन, सुख दुख के प्रति नितांत उदासीनता, और दूसरा ग्रीक दार्शनिक एपिक्यूरस का विचार, इंद्रियों द्वारा परम सुख पाने की अभिलाषा है। स्टोइक विचार में मृत्यु का कोई महत्व नहीं था। मनुष्य को शालीनता का व्यवहार करना है, अभिलाषाओं पर नियंत्रण रखना और परिवर्तनों के प्रति उदासीन बने रहना। दूसरे शब्दों में अच्छी किस्मत से खुश न हो और बुरे समय से निराश न हो। उनके विचार में मनुष्य परिस्थितियों से बड़ा है और आत्मा ब्रह्मांड से बड़ी है। यह बहादुरी का विचार था। इस विचार की समस्या थी कि ऐसा जीवन कैसे जिए। यह ऐसा है जैसे कोई कहे कि वह ईश्वर के पर्वतीय उपदेश के अनुसार जी रहा है, जबकि वह उस जीवन शैली से मीलों दूर है। एपिकुरियन विचारकों के अनुसार सब कुछ अनिश्चित है। हम नहीं जानते कि हम कहां से आए हैं, हम नहीं जानते कि हम कहां जा रहे हैं। हम बस इतना ही जानते हैं कि हम कुछ समय बाद इस सांसारिक दृश्य से विलोप हो जाएंगे। अतः आत्म त्याग और वर्तमान आनंद त्याग व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य शायद बुरा हो। अतः खा पी और आनंद कर, क्योंकि कल तो मरना ही है। मेरे मित्रों, इन दोनों विचारों में ध्यान देने योग्य बात यह है कि दैहिक अर्थात हमारे पुराने स्वभाव से संबंधित है। पुराना स्वभाव अर्थात पुरानी आदतें, पुरानी लालसाएं, पुरानी परीक्षाएं, लालसाएं आदि। हम इसे कैसे वश में करेंगे? आज मसीही जीवन शैली के लिए अनेक युक्तियां और मार्ग सिखाए जाते हैं। अनेक जन मसीही जीवन की सभाओं में जाते हैं, उनके घरों में मसीही जीवन पर टिप्पणियों से भरी हुई पुस्तकें हैं, परंतु वे मसीही जीवन जीने में सफल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम पौलुस की यह बात अपनाने से चूक जाते हैं कि हम जीवित मसीह से जुड़े हैं। मेरे मित्रों, यदि आप उससे जुड़े हैं तो आप वैसा ही जीवन जिएंगे। आप उसके कितने निकट हैं? क्या आप उसकी संगति में चलते हैं? क्या आप इस जीवन की प्रत्येक कठिन परिस्थितियों में उसके पास आते हैं? क्या वह आपके जीवन का केंद्र है? अब हम तीसरी बात देखते हैं। अब पौलुस विधि पालन की भूल के संबंध में अपने विचार प्रकट करेगा और हम देखेंगे कि समाधान परमेश्वर के वचन ही में है, प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने में। तो आइए हम पढ़ें कुलुसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 14 पद। लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। मेरे मित्रों, हमारा पुराना स्वभाव दंड के योग्य ठहरा था। जब मसीह यीशु मरा, वह आपके और मेरे लिए मरा था। उसने हमारे पापों का दंड चुकाया था। यीशु के क्रूस पर लिखा गया था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। उसे सार्वजनिक मृत्यु दी गई थी और उसका अपराध था कि वह विद्रोही था, जो सच नहीं था, परंतु उस पर यही दोष लगाया गया था। उस दोष पत्र को पढ़ने वाले यह मानते थे कि वह कैसर का विद्रोही है। उसने स्वयं को राजा कहा था। उनकी समझ में वह इसी कारण क्रूस पर लटकाया गया था। परंतु जब परमेश्वर ने क्रूस को देखा तो उसने वहां एक वेदी देखी जिस पर परमेश्वर का वह मेमना जगत के पापों को उठा ले जाने के लिए चढ़ाया गया था। परमेश्वर ने रोमी शासन के दोष पत्र के बहुत ऊपर लिखा, देख विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने क्रूस पर क्या लिखा? उसने विधि 10 आज्ञाएं लिखी। उसने व्यवस्था लिखी जिसका पालन करने में मैं असमर्थ था, अतः दोषी था। मसीह क्रूस पर इसलिए नहीं मरा कि उसने व्यवस्था का उल्लंघन किया था। वह तो निष्पाप था। वह इसलिए मरा कि मैंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, क्योंकि मैं पापी हूं। आप पापी हैं। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए हे मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है और आपको मृतकों में से जीवित करके जीवित प्रभु यीशु से जोड़ा है, तो आप उस व्यवस्था के अधीन क्यों होना चाहते हैं जिसका आप पालन ही नहीं कर सकते? आप अपनी शक्ति और अपनी योग्यता में व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते। व्यवस्था तो पुराने स्वभाव को अनुशासन में रखने के लिए दी गई थी, परंतु अब विश्वासी को नया स्वभाव दिया गया है और व्यवस्था को जीवन शैली से हटा दिया गया है। मेरे पास एक मनुष्य आकर कहने लगा, यदि आप मुझे यह बता दें कि विश्राम का दिन अब हटा दिया गया है तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा। मैंने उसे कहा, मेरे विचार में विश्राम दिन में परिवर्तन नहीं आया है। शनिवार आज भी शनिवार है। सप्ताह का 7वां दिन जो विश्राम का दिन है, मैं समझ सकता हूं कि हमारा कैलेंडर कुछ बदल गया है, परंतु 7वां दिन आज भी शनिवार ही है और विश्राम का दिन है। उसकी आंखों में चमक उभर आई। उसने कहा, यदि वह बदला नहीं है तो आप उसका पालन क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा, विश्राम दिन नहीं बदला है, परंतु मैं बदल गया हूं। मुझे अब नया स्वभाव दिया गया है। मैं मसीह यीशु से जुड़ा हुआ हूं। मैं नई सृष्टि का अंग हूं। हम पहले दिन को मानते हैं क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा था। इसका अर्थ है कि विधि का लेख जो हमारे विरुद्ध था, क्रूस पर कीलों द्वारा जड़ दिया गया है। तो आइए हम पढ़ें कुलुसियों के पत्री 2:15। लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। वह आत्मिक विजय जो प्रभु यीशु ने विश्वासियों के लिए जीती, उसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। हम आगे देखते हैं मसीह प्रथाओं का उत्तर। कुलुसियों के पत्री 2:16-17 में लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया हैं, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। ध्यान दीजिए, विश्वासी को प्रथागत और आराधना विधि संबंधित आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आज वे अर्थहीन हैं। परमेश्वर ने पुराने नियम के मनुष्यों को नियम दिए थे, अब बदल गया है। अब बदला है या नहीं? पौलुस कहता है कि वे आने वाली बातों की छाया थे। छाया यूनानी का वही शब्द है जिससे फोटो शब्द आया है। वे मसीह यीशु का चित्र थे। अब मसीह में हमारे पास वास्तविकता है, तो हम क्यों पुराने चित्र को देखें? मैंने एक विवाह संस्कार में भाग लिया जिसमें वर सैनिक था। वह युद्ध में चला गया। उसकी पत्नी अपने साथ उसकी बहुत बड़ी फोटो लेकर घूमती थी और लोगों को दिखा दिखा कर कहती थी, क्या यह रूपवान नहीं है? वह बहुत अच्छा लड़का था, परंतु मैं उसे रूपवान नहीं कहूंगा। अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो वह घर आया। वह उससे भेंट करने बंदरगाह तक गई। अब क्या वह उसका चित्र देखकर कहती, क्या यह अति रूपवान नहीं है? मेरे विचार में तो अब वह चित्र उसके पास नहीं होगा। उसे अब चित्र की क्या आवश्यकता थी? वह तो उसके गले में बाहें डाल सकती थी, उसे बातें कर सकती थी। मेरे प्रियो, हमें बहुतायत के जीवन के लिए तरह तरह की युक्तियां, कूद फांद, सभाएं आदि का त्याग करना होगा। क्या हम वास्तव में सफल हुए हैं? कुछ लोग सोचते हैं हम वास्तविकता के स्थान पर पुराना चित्र लेकर न घूमें। मसीह तुम में महिमा की आशा है। अब हम चौथी बात को देखते हैं। अब हम आत्माओं की पूजा के विरुद्ध चेतावनी को देखेंगे। कुलुसियों की पत्री 2:18-19 में हम पढ़ते हैं, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपने शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। मेरे मित्रों, यह एक और बात है जो विश्वासियों को पदभ्रष्ट करती है। पौलुस ज्ञान का स्वांग रचने वालों को झिड़क रहा है। आज हमारी कलीसियाओं में अनेक लोग अपनी धार्मिकता का स्वांग भरते हैं। वे आत्मिक घमंडी हैं। मैंने तो यही देखा है कि वे बाइबल के संबंध में अज्ञानी हैं। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। यह झूठा दिखावा है। ऐसा दिखावा करना कि जैसे किसी के पास कुछ है परंतु वास्तव में है ही नहीं। शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता अर्थात मसीह के साथ घनिष्ठ संबंध में नहीं रहता है। दूसरे शब्दों में उनका मन मस्तिष्क मसीह से जुड़ा ही नहीं है। अब हम पांचवी बात देखते हैं, अंतिम चेतावनी योगाभ्यास के प्रति है। कुलुसियों के पत्र 2:20-23 पद में, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना? ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार हैं। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। मसीह के साथ मर गए अर्थात जब मसीह मरा था तब हम भी मर गए थे, अतः पुराने जीवन में प्रवेश न करो। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोग कलीसिया के क्षणिक तौर तरीकों को मानते हैं। एक समय था कि कलीसिया होठों पर लिपस्टिक लगाने के पक्ष में नहीं थी। एक बार मैं किसी स्कूल में गया जहां लड़कियों को लिपस्टिक लगाना मना था। एक लड़की ने आकर मुझसे कहा, आपके विचार में लिपस्टिक लगाना क्या उचित है? मैंने कहा, यहां बहुत सी लड़कियां हैं जो लिपस्टिक लगाए तो अच्छी लगेंगी। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे से अच्छे दिखें। चाहे हमारे पास थोड़ा सा ही हो, हमें उसे भी सबसे अच्छी तरह संभालना है। मेरे मित्रों, यहां हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वह है दीनता की नकल करने का घमंड। यह घमंड ही है जो कहता है, मैं आत्मत्याग करता हूं, मैं इन बातों को नहीं करता, मुझे देखो, मैं पर उगा रहा हूं और अपने प्रकाश मंडल को प्रतिदिन सुबह चमकाता हूं। कुछ भी लाभ नहीं। मेरे मित्रों, योगाभ्यास किसी काम का नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें आनंदित रहें। प्रभु यीशु आपकी घनिष्ठता चाहता है। यदि आप उसकी संगति में रहेंगे तो आपका समय आनंद का समय होगा, क्योंकि वही सब कुछ देने वाला है। आपके अभ्यास करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप उसमें नहीं जुड़े हैं। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको चुनाव करना है कि हम किसके साथ जुड़ करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु यीशु चाहता है कि हम हर एक अपने जीवन में शांति को प्राप्त करें। मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा फिर से आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं,
श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं,
बिगड़े बने सारे काम, बिगड़े बने सारे काम। यीशु